निक ने प्रियल को दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढने को कहा और साथ ही अपनी आवश्यकताएं भी बता दीं। इन्हें सुनकर प्रियल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जो भी आवश्यकताएं बताई थीं वे प्रियल के बिल्कुल विपरीत थीं। निक उसके करीब आकर बोला, तो तुम्हें लगा तुम्हारे जैसी चाहिए? प्रियल ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना किया और उस कमरे में गई जहां ऑफिस बना था। वहां जाकर वो फाइलें चेक करने लगी। निक उसके पीछे पीछे गया। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया? प्रियल ने फाइल चेक करते हुए कहा, आप जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अब तो रूम भी खाली है, तो जाकर सो जाइए। बाकी इतना ही लड़कियां ढूंढने का शौक है तो किसी दुल्हन ढूंढो एप्लीकेशन पर अकाउंट बना लीजिए, वहां पर बहुत सारी मिल जाएंगी। निक ने देखा कि प्रियल के सामने काफी सारी फाइलें पड़ी थीं। उसे मिस्टर मुखर्जी की बात याद आ गई तो वो भी वहां पर बैठ गया और उसने एक फाइल उठाकर बोला, चलो आज मैं फ्री हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम भी ये याद रखोगी, लेकिन बी प्रोफेशनल और तुम मुझसे अच्छे से बात करोगी। प्रियल ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, जी सर। वेरी गुड मिस शर्मा, हम दोनों ने ही जन्नत बाजार की सभी लड़कियों को देखा है। अगर हम दोनों अलग अलग फाइलें चेक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक साथ करते हैं। कुछ बात आपको याद होगी तो कुछ मुझे। ठीक है, आप बताइए, मैं साथ में नोट्स भी बना लेती हूँ। निक ने प्रियल को अपने पास खींच लिया और कहा, तो पास आकर बैठो ना, इतनी दूर से आपको दिखाई थोड़ी ना देगा। ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है सर? प्रियल ने गुस्से में कहा। हाँ, मेरे रूल्स थोड़े अलग हैं, निक ने हल्की हंसी के साथ कहा। चलो बहुत मजाक हो गया, अब आ जाओ जल्दी से। निक आज जन्नत बाजार में मिली हुई लड़कियों की विशेषताएं प्रियल को बता रहा था और वो उस सबको एक पेपर में लिख रही थी और साथ ही फाइलों में चेक कर रही थी कि जन्नत बाजार की किसी लड़की की विशेषता उनमें से किसी से मिलती है या नहीं। निक प्रियल को बता रहा था तभी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। अचानक प्रियल की नज़र निक की आंखों में गई तो वो उसकी आंखों में खो गई। निक ने उसे परेशान करने के लिए कहा, कितनी बार कहा है मिस शर्मा, आप मेरी आंखों में मत देखिए, फिर बाद में मुझ पर ब्लेम डालेंगी कि मैं आपके करीब आने के बहाने ढूंढता हूँ। प्रियल ने झट से अपनी नज़र उस पर से हटाई और इधर उधर देखने लगी। उसने अगले ही पल खुद को संभाला और निक से नज़रें चुराते हुए कहा, वो मैं आपकी आंखों में नहीं देख रही थी, वो आपके बालों पर कुछ लगा हुआ था ना, उसको देख रही थी। और मेरे बालों पर क्या लगा हुआ है? प्रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा, कम से कम बहाना तो अच्छा बता देती प्रियंका। निक को उसकी बात सुनाई दे गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे करीब आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले। प्रियल ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, सर बाकी का काम सुबह करते हैं ना, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं देख लूंगा। नहीं सर, ये मेरा काम है, बचा हुआ काम मैं अपने आप कर लूंगी, आप जाकर सो जाइए। उसकी बात सुनकर निक को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने प्रियल को अपने करीब खींच लिया। वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे जिससे प्रियल के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगी। अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों का है कोई जवाब तुम्हारे पास? फिर क्यों कर रही हो ये सब? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, मत जाओ ना मुझसे दूर, बोलते हुए निक की आंखें नम और आवाज़ भारी हो गई। प्रियल ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती कैप्टन निक, आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई है। 5 साल पहले मैंने भी बहुत सफाई दी थी, मैं भी बहुत तड़पी थी आपके लिए, लेकिन तब जब आपको मेरा दर्द नहीं दिखाई दिया तो अब आज मुझे आपका दर्द कैसे दिखाई दे सकता है? इस बार मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अपनी बात कहकर प्रियल गुस्से में वहां से अपने रूम में चली गई। निक उसके पीछे गया लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वापस कमरे में आकर अपना काम करने लगा। निक वहीं पर बैठकर सब फाइलें चेक कर रहा था लेकिन उसका मन अभी भी प्रियल की बातों में अटका था। प्रियंका जी की जान मेरी वजह से कैसे जा सकती है? प्रियल जो भी अभी निक को बोलकर गई थी वो सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और साथ ही खुद पर गुस्सा भी। निक ने गुस्से में एक फाइल फेंक कर बोला, क्यों नहीं दिखाई देता तुम्हें मेरा दर्द? मुझसे पूछो पिछले 5 साल में मैंने कैसे बिताए हैं। मैंने 5 साल पहले जो भी किया मेरी भी एक मजबूरी थी, लेकिन किसी को बताऊंगा तो कोई नहीं समझेगा और ना ही कोई मानेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, पर तुम तो समझो मेरे दर्द को। क्या हो जाता जो एक रात तुम मेरा गुस्सा झेल लेती, एक बार तो ये सोच लेती कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। मैं क्या कभी तुम्हें निकाल सकता था घर से? अगर मैं चाहता तो पहले भी तुमसे नफरत कर सकता था, उससे भी बड़ा रीज़न था मेरे पास। उस दिन जिद करके तुम मिस्टर दत्ता के घर गई, मेरी जिंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट को मुझसे छीन लिया। तब भी एक बार भी शिकायत नहीं की मैंने, तो उस रात कैसे, क्यों नहीं समझना चाहती तुम मुझे? निक ने गुस्से में सभी फाइलों को इधर उधर फेंक दिया। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। उसे वहीं रोते रोते नींद आ गई। अगली सुबह जब प्रियल उठकर उस रूम में आई तो उसने देखा सारी फाइलें इधर उधर फेंकी हुई थी। निक साइड में लगे एक सिंगल बेड पर सो रहा था और उसने हाथ में एक फाइल को पकड़ रखा था। प्रियल ने कहा, लगता है रात को काम करते करते यहीं सो गए, या यूं कहूं कि गुस्से में सारी फाइलों को इधर उधर फेंक दिया। अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। वो निक के पास आई तो उसने देखा कि उसने अपने हाथ में जो फाइल पकड़ रखी थी वो वही फाइल थी जिसमें निक मेन रिपोर्ट बना रहा था। ये तो वही फाइल है जिसमें हम मेन रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। पता नहीं कितना काम बाकी रह गया होगा। इन्होंने तो इस फाइल को इतना टाइट पकड़ा है कि मैं निकाल भी नहीं सकती। फिर भी कोशिश करके देखती हूँ, शायद छोड़ दें। प्रियल ने निक के पास आकर धीरे से उसके हाथ से वो फाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसका पैर निक में उलझ जाने की वजह से वो उसके ऊपर गिर गई। उसके गिरने की वजह से निक की आंख खुल गई। उसने बंद आंखों से कहा, तुम कभी मुझे चैन से सोने दोगी क्या कुड़िया? फिर कहती हो मैं बदल गई, जब भी मैं सो रहा होता हूँ मेरे ऊपर आकर गिर जाती हो। प्रियल ने धीरे से बोलते हुए कहा, लगता है कोई सपना देख रहे हैं, तभी नींद में बड़बड़ाए जा रहे हैं। निक ने आंख खोलकर बोला, तुम पागल हो क्या? मेरे ऊपर पड़ी हो और ऊपर से मैं ही सपना देख रहा हूँ। चलो खड़ी हो जाओ, वरना। वरना क्या? निक ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय प्रियल को कमर से पकड़कर बेड पर लेटा दिया। निक ने कहा, वरना ये। लगता है एक ही रात में इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, प्रियल ने सोचा। निक बेड पर से उठा और कहा, रेडी रहना मिस शर्मा। किस चीज के लिए? प्रियल ने हैरानी से पूछा। रात को जो बात आधी अधूरी बताई थी उन सबको डिटेल में बताने के लिए, वो भी सबके सामने। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, और एक बार के लिए आप भी चुप रहिएगा, परेशानी टल जाएगी, प्रियल ने जवाब दिया। निक ने कहा, अच्छा परेशानी टल जाएगी, और ये तुम्हारी आधी अधूरी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसका क्या? तुम्हें सारी बात सबके सामने बतानी पड़ेगी मिस शर्मा, मैं सबको बुलाकर ला रहा हूँ यहाँ पर। कोई नहीं है यहाँ, परी जिसे लेकर हॉस्पिटल गई है रेगुलर चेकअप के लिए। रॉन्सर और आलिया ऑफिस गए हैं, जैन और रीमा मैम तो वैसे भी यहाँ पर नहीं है, तो बचे सिर्फ आप और मैं, और वैसे भी मुझे इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप मुझे वो फाइल दीजिए, मैं बचा हुआ काम भी कंप्लीट कर देती हूँ। निक ने कहा, कौन सा बचा हुआ काम? मैंने रात को सारा खत्म कर दिया था, और मिस्टर मुखर्जी शाम को आ रहे हैं।
ये बात आपको पहले से पता थी ना, फिर भी आधी रात को आपने मुझसे काम करवाया, निक ने आंखें बड़ी करके कहा। कौन सा काम करवाया? सारी रिपोर्ट तो मैंने तैयार की है, और मुझे पहले से पता नहीं था। आधी रात में मिस्टर मुखर्जी का मैसेज आया था, तुम चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकती हो, लेकिन तुम तो बस झगड़ा करना आता है, वो तुमने कर लिया और जाकर आराम से सो गई। देखो सुबह सुबह मेरा बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बाकी लोग घर पर नहीं हैं तो ये जो कचरा फैला है इसको साफ करो। प्रियल ने कहा, मैं क्यों साफ करूंगी? घर की सफाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मेड नहीं आती है और मुझे डस्ट एलर्जी है। मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगा, अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए तो लग जाओ काम पर, कहकर निक वहां से बाहर जाने लगा। प्रियल उसके पीछे दौड़ते हुए आई और चिल्लाकर कहा, मैं नहीं करने वाली हूँ, चुपचाप शुरू हो जाओ। निक वहां से नहाने के लिए चला गया तो प्रियल को मजबूरन घर की सफाई के काम में लगना ही पड़ा। अजीब जबरदस्ती है, मैं क्या नौकरानी हूँ इनकी जो घर का सारा काम करती रहूं? कभी इन्हें खाना बना कर दूं तो कभी इनके घर की सफाई करूं। मन तो करता है कि एक दिन अच्छे से पकड़कर इनके दिमाग की सफाई कर दूं। प्रियल गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर की सफाई कर रही थी। निक भी नहाकर वापस आ गया था और किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी डोरबेल बजी। इस वक्त यहाँ कौन आया होगा? कहीं मिस्टर मुखर्जी तो नहीं आ गए? प्रियल ने चिल्लाकर पूछा। डोरबेल और प्रियल की आवाज़ सुनकर निक किचन से बाहर आया और कहा, मुझमें कोई सुपर पावर तो है नहीं जो बिना दरवाज़ा खोले बता दूं कि बाहर कौन आया होगा। निक के इस तरह टोंट मारने की वजह से प्रियल ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। निक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा खोलने चला गया। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजे की दूसरी तरफ मीरा को खड़ा देखकर निक ने हैरानी से पूछा। मीरा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसे साइड में करके जल्दी से घर के अंदर आ गई।